Шидэлж. Шидэлж. एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। क्षितिज कार्यक्रम लिए उपस्थित हैं, जिसमें आप समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं। श्रोताओं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, क्षितिज कार्यक्रम हिंदी सचिवालय के सहयोग से मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य रहता है देश विदेश से आए हुए हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो हिंदी की विविध विधाओं से जुड़े होते हैं, उन्हें हम आपके समक्ष हम प्रस्तुत करते हैं क्षितिज कार्यक्रम के साथ। हमारे लिए आज बड़ी ही खुशी की बात है कि अगले सोमवार को 12 फरवरी को 16वां विश्व हिंदी सचिवालय के सहयोग से कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया जाता है वे आयोजित किया गया है। इसके अंतर्गत अनेक हमारे विदुषीगण, हमारे एक्सपर्ट लोग जो हैं वो मॉरिशस में पधारे हुए हैं, और आज उनमें से एक हमारे साथ हैं, संतोष चौबे जी, जो रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं और फिर सीवी रमन विश्वविद्यालय में भी कार्यरत हैं, और 54 देशों में कला, संस्कृति और भाषा को लेकर वे प्रचार प्रसार करते आ रहे हैं। विविध विधाओं से वे जुड़े हुए हैं, कहें कवि, कलाकार, फिर कथाकार, उपन्यासकार, लगभग 20 किताबें उनकी जो हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं, और संपादन के क्षेत्र में भी वे 40 किताबों के साथ जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है हिंदी में कंप्यूटर पर पहली किताब विज्ञान पर हिंदी में जो है विज्ञान के साथ जुड़ी हुई उन्होंने कई किताबें जो हैं अभी अभी हाल ही में प्रकाशित उनके द्वारा की गई हैं। आज वे हमारे स्टूडियो में हैं। श्रीमान चौबे जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है, हमारा स्वीकार करें। नमस्कार।
नमस्कार, मैं सभी मॉरिशस के श्रोताओं को भी नमस्कार करता हूँ और बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे इस स्टूडियो में बुलाया। हिंदी इस समय विश्व की उभरती हुई भाषा है।
बिल्कुल,
तो हम हिंदी के बारे में थोड़ी बात करेंगे।
ज़रूर, जैसे कि मैंने आपके परिचय में बताया कि कई कई बार एक व्यक्ति सिर्फ एक विधा से या दो विधा से जुड़ता है, जबकि मैंने आपके परिचय में देखा बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के कारण सबसे बड़ी बात जो है वो विज्ञान के साथ जुड़ना। कई कई बार लोगों को बड़ा अचंभा होता है कि कोई व्यक्ति जो हिंदी के साहित्य के साथ जुड़ा होता है, शायद विज्ञान उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इन दो का संगम कैसे आपके साथ हुआ, हमारे श्रोताओं को बताएं, और इसका क्या गूढ़ संबंध है हिंदी साहित्य का विज्ञान के साथ?
जी, ये बहुत ही दिलचस्प सवाल आपने रखा है। मैं तो पेशे से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ।
अच्छा।
और कंप्यूटर साइंस में काम करता रहा,
कहीं ना कहीं उसका भी असर जो है, प्रभाव जो है।
और रेडार एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया।
अच्छा।
दिल्ली IIT से। तरह विज्ञान मेरे पढ़ाई के साथ साथ मेरे साथ आया, लेकिन मेरे पिता वनमाली जी हिंदी के बड़े कथाकार थे।
अच्छा।
जगन्नाथ प्रसाद चौबे वनमाली, वो प्रेमचंद के समकालीन थे।
अच्छा।
और शॉर्ट स्टोरीज में वो बड़ा नाम है अभी। तो उनका जो प्रारंभिक प्रशिक्षण था मुझे, वो लिखने की ओर प्रेरित करते थे। वो कहानियाँ तो पहले नहीं, निबंध लिखने की तरफ प्रेरित करते थे, और अवलोकन का जो काम है कि अपना आसपास का देखो, अपने समाज को देखो, अपने घर परिवार को देखो, और उसके आधार पर लिखना शुरू करो।
फिर देश को, कहते हैं ना, साहित्य समाज का दर्पण है।
जी बिल्कुल। और फिर देश को देखो, फिर विश्व को देखो।
बिल्कुल।
तो इस तरह मेरी यात्रा विज्ञान से तो पढ़ाई के साथ साथ, लेकिन साहित्य की अपने घर परिवार के साथ साथ शुरू हुई। और मैंने पहले व्यंग लेख कुछ लिखे।
अच्छा।
लेकिन बाद में फिर मैं कहानियों में आया, फिर कहानियां कुछ लंबी होती गई तो उपन्यास में आया, और कविता मेरी मूल विधा भी है।
अच्छा।
तो कविता भी बहुत सारी हैं, अनुवाद का काम भी करता हूँ, और विज्ञान पर भी मैं, क्योंकि भाषा मेरे पास है तो विज्ञान पर भी लिखने का काम करता हूँ। दोनों को ही साथ साथ लेके चलता हूँ।
ये तो बहुत बड़ी बात है हमारे श्रोताओं के लिए, क्योंकि अक्सर आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो कई कई बार जब विज्ञान की तरफ झुकाव उनका होता है तो वो हिंदी को थोड़ा सा अलग कर देते हैं।
जी, जी.
तो ये तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छा एक एक अच्छी मिसाल हमारे श्रोताओं जो जी. सुन रहे हैं उनके लिए है।
जी.
अब थोड़ा इन इन दो विषयों का संबंध जो है उसके बारे में बताएं, किस तरह से विज्ञान साहित्य में किस तरह से मददगार होता है।
देखिए, अपने अनुभव से मैंने ये जाना है कि विज्ञान और साहित्य दोनों में ही एक चीज़ कॉमन है, वो है जिज्ञासा, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी जिसको हम कहते हैं, जिज्ञासा और आश्चर्य। जब आप आश्चर्य करते हैं किसी चीज़ पर तब उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं और जिज्ञासा आपके मन में पैदा होती है। तो विज्ञान के उपकरण अलग हैं, वो अलग तरह से जाँचता है, लेकिन साहित्य अलग तरह से जाँचता है। और किसी के मन में प्रवेश करना है तो वो साहित्य ही कर सकता है, विज्ञान नहीं कर सकता।
कहते हैं ना, जहाँ तो, सूरज ना पहुँचे वहाँ कवि पहुँच जाते हैं।
जी, संतुलित मनुष्य को बनाने के लिए विज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आवश्यक है और मुझे लगता है कि साहित्य उससे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आज के समय में प्रेम है, करुणा है, दया है, ऐसे जो भाव हैं वो साहित्य आपके मन में पैदा कर सकता है।
बिल्कुल, जहाँ साइंस को थोड़ा सा रुख बताते हैं, साहित्य वही जो है मनोभावों की, भावों की अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करता है।
जी बिल्कुल बिल्कुल।
तो मैं चाह रही थी कि हमारे बहुत से जो युवा पीढ़ी हैं उनको आप कैसे कहेंगे, क्या उनको कैसे प्रेरित करेंगे कि साहित्य किस तरह से जो है दोनों क्षेत्रों को साथ में लेकर बहुत अच्छा विकास हिंदी के क्षेत्र में कर सकता है।
मुझे लगता है कि जीवन के मूल रूप से चार क्षेत्र हैं। एक जो है वो अपना अंतर्मन है जिस पर हम लोग काम करते हैं, उसके बाद सामने हमारे जड़ पदार्थ हैं, प्रकृति है, पशु पक्षी हैं, और चौथे स्तर पर मनुष्य है। तो हमें जो नीचे के तीन स्तर हैं उनके विश्लेषण करने के लिए, उनको मैनिपुलेट करने के लिए, उनका मानव जाति के लिए उपयोग करने के लिए विज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हम मनुष्य से डील करते हैं तो उसको हम सिर्फ बायोकेमिस्ट्री नहीं मान सकते, उसको हम सिर्फ जड़ पदार्थ नहीं मान सकते। जब उसकी मृत्यु होती है तब वो जड़ पदार्थ बनता है।
बिल्कुल, वैसे
तो वो जीवित मनुष्य है, उसमें कहते हैं कि हिंदी भारतीय परंपरा में तो आत्मा है।
बिल्कुल।
और जब वो है तो उसके विश्लेषण के लिए आपको साहित्य की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मैं चाहूँगा कि युवा पीढ़ी जो है वो अपने देश का साहित्य, अपने विश्व का साहित्य पढ़े, और उसमें भी जो उसकी रुचि हो, आजकल कथेतर बहुत लिखा जा रहा है, मतलब कथा के अलावा जो विवरण हैं वो बहुत साहित्य में स्थान पा रहे हैं, तो कविता भी एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है, और उसके ज़्यादा संगीत भी एक बहुत ज़रूरी काम है।
मैं समझती हूँ आज संगीत के माध्यम से बहुत से हमारे हिंदी प्रेमी जो हैं वो काफ़ी सहजता से जुड़ पाते हैं।
जी जी जी। तो कविताओं का मंचन किया जाए, कविताओं को कंपोज किया जाए। हम लोगों ने अपना जो लगभग 30-35 साल से मैं साहित्य में और कला और संगीत में हूँ, तो मैंने देखा कि हिंदी कविताएं जो हमारे बड़े लेखकों ने लिखी हैं उनको अगर युवाओं तक पहुंचना है तो उसको संगीत में ढालना बहुत ज़रूरी है।
हाँ, ये भी
और वो पूरी पूरी याद रहती हैं।
बिल्कुल।
हमारे बहुत बड़े कवि हैं कुंवर नारायण जी, अब नहीं रहे, उनकी सारी कठिन कविताएं भी, घर रहेंगे हम ही उनमें रह न पाएंगे, समय होगा हम अचानक बीत जाएंगे। अब ये जो कविता है दार्शनिक कविता है, लेकिन अंततः वो संगीत में ढल के
गीत में उसको प्रवाहित करा है, तो वो अपने आप लोगों को याद या उनके जहन में आसानी से पहुंचाने तक का एक बहुत अच्छा माध्यम है।
जी जी जी।
मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि देखें, जब एक इंसान अक्सर जो है ना, कई कई बार हमारे युवा, मैं युवाओं को लेकर ज़्यादा कहूँगी, साहित्य के जैसे आपने कहा कि प्रेरित करते हैं, कहते हैं ना किसी को जीवन में रुलाना बहुत आसान है लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल है।
जी, जी जी जी।
और जैसे कि आपने कहा कि आपने व्यंग में भी जो है लिखा शुरुआती दौर में,
जी।
तो क्या व्यंग में लिखना आसान होता है, क्योंकि किसी को हंसाना जिस तरह कठिन है, क्या व्यंग काव्य को उसका लेखन करना कठिन होता है?
नहीं, मुझे लगता है कि व्यंग हास्य तो फिर भी थोड़ा सरल हो सकता है।
हाँ, हाँ।
पर व्यंग करना थोड़ा कठिन काम है,
क्योंकि उसमें, यही मैं पूछ रही
हूँ, जी, उसमें थोड़ा विडंबना भी और आपकी दृष्टि शार्प होनी चाहिए।
हाँ।
तो मेरे परिवार में शैल चतुर्वेदी जो बड़े व्यंगकार थे, थे हास्य व्यंग के बड़े कवि थे, मेरे बड़े भाई थे, तो
अच्छा।
उनके साथ मुझे ये
कहीं ना कहीं
मिला,
और प्रभाव जो है
वनमाली जी भी व्यंगकार थे।
हाँ, हाँ, अच्छा।
तो मैं विडंबना को पकड़ना और उस पर तीखा वार करना,
हाँ।
ये थोड़ा जल्दी सीख गया था।
अच्छा।
फिर धीरे धीरे मैं क्योंकि विज्ञान में आया और दर्शन में आया तो मेरी रचनाएं गंभीर होती गई।
हाँ।
और
क्यों? क्योंकि व्यंग में ऐसा है कि हम व्यंग कर तो लेते हैं लेकिन वो व्यंग बहुत सधा हुआ या फिर बहुत ही रिफाइंड जिसे कहें, क्योंकि कई बार व्यंग व्यंग में जो वल्गैरिटी या फिर व्यंग में अगर कोई ऐसी बात जो भौंडी लगे वो जो है वो कई बार खटकती है।
मुझे ये सिखाया वनमाली जी ने भी, शैल जी ने भी, कि व्यंग का अंतिम लक्ष्य जो है वो करुणा है। जिस पात्र के प्रति आप व्यंग कर रहे हैं उसके प्रति अंत में आपके मन में करुणा पैदा होनी चाहिए और पात्र को ऐसे रखना है कि उस पर व्यंग ही व्यंग न रह जाए,
तो ये भी बहुत करुणा पैदा होनी चाहिए। क्योंकि आजकल मॉरिशस में भी व्यंग को लेकर जो है, हास्य काव्य को लेकर जो है वो काफी चर्चा हो रही है कि होना चाहिए, क्योंकि आज सभी लोग तनाव में जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये व्यंग काव्य जो है कहीं ना कहीं लोगों को राहत पहुंचा सकता है, इसका एक बहुत अच्छा। जहाँ की कहानियों का और उपन्यासों की बात मैंने आपके परिचय में देखी, तो जो किताबें आप लिखते हैं वो किस वर्ग?
मेरे लेखन कर्म में लगातार सतत विकास रहा है।
अच्छा।
तो पहला उपन्यास 84-85 के आसपास आया था और मैं खुद ही उस समय युवा था।
अच्छा।
तो उसको आप एक तरह का कैंपस नॉवेल या उसमें मेरा कॉलेज भी था, मेरा बचपन भी था।
अच्छा।
ये सारी चीजें थी। बाद के उपन्यास थोड़ा राजनीति और समाज के ऊपर केंद्रित रहे और हाल में मैंने एक उपन्यास लिखा है जो म्यूजिक पर केंद्रित है, संगीत पर।
उसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि आजकल सभी इससे बहुत आकर्षित होने।
बात यह है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक बड़ी लंबी परंपरा है। वो सामगान से शुरू होती है और अभी ख्याल गायकी तक आती है, फिर अब सुगम संगीत बहुत सारा लोकप्रिय है। तो इस पूरी परंपरा को पहचानना और उसका संबंध बाकी कैसे, जैसे रागमाला पेंटिंग भारत में एक चीज होती है जिसमें कि रागों के ऊपर चित्र बनाए जाते हैं, तो पेंटिंग का भी म्यूजिक से संबंध है, म्यूजिक का साहित्य से संबंध है।
बिल्कुल।
इस लेवल पर वो उपन्यास। और सबसे बड़ी बात है कि विश्व में सबसे बड़ी समस्या इस समय शोर की होने जा रही है। मॉरिशस बहुत शांत जगह है, मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन भारत में विशेषकर बड़े शहरों में जो नॉइज है और जो शोर है वो बहुत परेशान करने वाला है
आजकल।
और अगर आपके मन में संगीत है तो आपकी टकरावट जरूर शोर से होगी।
हाँ,
कभी न कभी जीवन में
जरूर।
तो अंततः उस उपन्यास में शोर और संगीत की टकराहट भी होती है और जो प्रोटैगनिस्ट है यानी जो नायक है वो अंततः एक सॉल्यूशन निकालता है जिसमें वो संगीत का एक स्कूल खोलता है और बच्चों को उनकी ट्रेनिंग देना शुरू करता है। चौथा मेरा उपन्यास अभी जो आया है वो ब्लैक होल के ऊपर है।
अच्छा।
तो विज्ञान पर केंद्रित उपन्यास है। उसमें भी ये कहा जा रहा है कि कैसे ग्लोबल विश्व में मनुष्य एक तरह के ब्लैक होल में सक हो जाता है और जब तक कि वो अपनी दूरी ना बनाए उससे, तो वो भी
जबकि वो भी एक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है।
जी,
की आवश्यकता उसको है लेकिन उसको किस सीमा तक आपको अपने से दूर रखना और किस हद तक आपको उसका इस्तेमाल करना, प्रयोग करना है,
बिल्कुल,
वो बहुत एक इंसान पर निर्भर करता है।
बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल आपने सही कहा। मैं एक और सवाल मेरे दिमाग में उठ रहा है कि कई कई बार जैसे हमने आपने शुरुआत में कहा कि आपके पिताजी प्रेमचंद के समकालीन थे और जैसे प्रेमचंद भी काफी हद तक कहानियों में, कथाओं में, महाकाव्य में सीमित रहे, कविता उनके लिए काफी दूर दूर का था।
हाँ, हाँ।
तो मैं आपसे मैंने आप में देखा कि आप जो हैं कवि भी हैं, कथाकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, फिर ऊपर से विज्ञान की किताबें लिखना, ये सब एक साथ होना क्या कहीं कहीं आपको खटकता है या फिर आपने सहजता से उसे स्वीकार लिया, कर लिया? क्योंकि कई बार एक में जब इंसान रच जाता है, बस जाता है, तो दूसरी जगह ट्यून करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है और वो भी हिंदी के क्षेत्र में।
मुझे एक वास्तविक ज़रूरत महसूस होती थी इस बात की कि संतुलित मनुष्य बनना है तो विज्ञान मुझे पूरा नहीं पड़ता था।
अच्छा।
और मनुष्य को जानने के हिसाब से मुझे ध्यान, दर्शन इस तरफ आने की ज़रूरत महसूस हुई, फिर मैंने लिखना शुरू किया।
अच्छा।
तो लिखने से मैं एक संतुलित मनुष्य बन पाया।
ये बहुत बड़ी अच्छी बात आपने हमारे युवाओं को बताई, क्योंकि अक्सर जब सब्जेक्ट विषयों के चुनाव का वक्त होता है तो अक्सर बच्चे जो हैं अपनी भाषा को जो है थोड़ा सा छोड़ देते हैं।
कविता स्वाभाविक रूप से मेरे पास आई लेकिन गद्य में मुझे प्रयास करना पड़ा।
अच्छा।
और अब मैं अपने आप को एक उपन्यासकार मानता हूँ क्योंकि गद्य थोड़ा कहानी अब ज़्यादा बड़ा फलक मांगती है।
अच्छा, तो जैसे दोनों विधाओं को आपको, दोनों विधाओं में आपकी कलम जो चली वो सहजता, उसमें कठिनाई नहीं महसूस हुई?
मैं ये बताऊंगा कि ऐसा होता है, यदि स्वाभाविक लेखक आप हैं तो धीरे धीरे कविता अपना विस्तार ग्रहण करती है और आप कहानी में आ जाते हैं। कहानी करते हैं तो आप विश्व को जानना शुरू करते हैं, तो वो उसका फलक और बड़ा बनता है।
बिल्कुल।
तो वो उपन्यास में आ जाता है और एक समय के बाद फिर आपको संक्षिप्तीकरण की ज़रूरत पड़ती है तो आप कविता में लौटते हैं। लगभग ये सर्कल जैसा है जिसमें कि मैं कम से कम गया। अभी हाल में मेरा एक संग्रह घर बाहर के नाम से आया है।
अच्छा।
तो घर बाहर में इस सर्कल के कंप्लीशन को देखा जा सकता है।
अच्छा।
जिसमें प्रेम कविताएं भी हैं, मेरी अभी की उम्र को देखकर वो मैच्योर प्रेम कविताएं हैं।
अच्छा।
उसमें समाज के ऊपर कविताएं भी हैं, उसमें राजनीति पे भी कुछ कविताएं हैं, पर अंततः वो दर्शन में जाके। मैं एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पर कि गोपालदास नीरज बड़े कवि हुए अपने यहाँ, और उन्होंने ये कहा कि मैं अंततः जो दर्शन है उसको प्रेम में लिखता हूँ क्योंकि वो रोचक और दिलचस्प हो जाता है।
बिल्कुल।
तो उनकी कविताएं जो हैं वो है दर्शन, लेकिन लिखा गया है प्रेम कविता के रूप में। तो कुछ उस जगह पे आप पहुँच जाते हैं जहाँ पर कि थोड़ा फिलोसोफिकल भी आप होते हैं। दूसरी बात उन्होंने एक कही और जो हमारी किशोरी अमोनकर ने भी कही, जो बड़ी शास्त्रीय संगीतकार थी, नीरज ने कहा कि मैं भाषा के बाहर जाना चाहता हूँ, और किशोरी ने कहा मैं सुरों के बाहर जाना चाहती हूँ। तो ये भाषा के बाहर जाना क्या है और सुरों के बाहर जाना क्या है, मुझे लगता है कि ये वही है जहाँ जिस आध्यात्मिक स्पेस में आप प्रवेश करना चाहते हैं। तो भाषा के माध्यम से जहाँ पहुँचना है और सुरों के
जीवन का लक्ष्य
जी, तो
जीवन का
सारे बड़े कलाकार वहाँ पहुँचते हैं। तो मेरे कविता संग्रह इस बार कुछ इस तरह का अभी आया है और वो सर्कल को पूरा करता है।
तो समय हो चुका है चौबे जी, मैं चाहूंगी आपसे अंत में आप कहना चाहेंगी कि हमारे श्रोताओं को।
मैं एक बस छोटी सी बात कहूँगा और एक छोटी सी कविता भी सुनाऊँगा। कहो कि कहने की आदत रहे, सहो कि दिलों में प्यार की इबारत रहे, बहो कि दुनिया में जोश और बगावत रहे, कहो सहो और बहो कि कम से कम आदमी तो रहो।
बिल्कुल, तो बहुत खूब,
ये
बहुत
है। और मैं विश्व हिंदी सचिवालय के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि अब हमने हमारे विश्वविद्यालय रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने एक ग्लोबल फेस्टिवल शुरू किया है जिसमें 54 देश उसका
शामिल हैं।
विश्व हिंदी सचिवालय भी पिछली बार उसमें उपस्थित था।
अच्छा।
तो अब हमारा ज़्यादा प्रगाढ़ संबंध विश्व हिंदी सचिवालय से होने वाला है। मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ और हम इस सहयोग को बहुत आगे बढ़ाएंगे और आप सब श्रोताओं से भी बार बार बात करेंगे। बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचारों के लिए, और उम्मीद है आगे भी आपसे मुलाकात होगी। क्षितिज कार्यक्रम के समस्त श्रोताओं को हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हमारा ये प्रोग्राम आपके साथ जो है सुना। एक और कड़ी तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार।
नमस्कार, धन्यवाद।